पृष्ठ संख्या 48, प्रतीक बिंब, राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में, कविताओं में प्रतीकात्मकता की दृष्टि से एक आधारभूत समान धर्मिता है और वह प्रकाश और अंधकार के सनातन संघर्ष पर आश्रित है। मुक्तिबोध की कविता का तो शीर्षक ही इस मूलभूत समस्या का उद्घोष करने वाला है। यह शीर्षक देना कदाचित मुक्तिबोध के लिए आवश्यक भी था, क्योंकि उनका काव्य नायक, या कि वह स्वयं, सामाजिक अन्याय और शोषण का विरोधी है और वह इस संदर्भ में सामाजिक क्रांति की अगुवाई भी करना चाहता है, किंतु कर वह कुछ भी नहीं पाता, न सामाजिक संगठन कर पाता है पृष्ठ संख्या 49, और ना ही वह प्रतिपक्ष का सामना करने का साहस रखता है। इसलिए वह भागता रहता है पूरी रचना में निरंतर। उसमें क्रांतिकारी विचार तो हैं, किंतु सही दाना, संकल्प शक्ति का एकदम अभाव है। अतः मुक्तिबोध के काव्य नायक का अंधकार दुहरा है, एक भीतरी जो उसके आत्मबल की कमी का परिचायक है, दूसरा बाहरी जो आधुनिक शस्त्र अस्त्रों से लैस सत्ता की समूची सेना के सामने उसके अकेले और निहत्थे होने के दारुण सत्य से जुड़ा हुआ है। कविता में संकल्प और आत्म दौर्बल्य की स्थितियाँ अक्सर साथ साथ मिलती हैं। भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सका, नहीं नहीं उसको मैं छोड़ नहीं सकूँगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले हो। कमज़ोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाज़ा खोलने, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोछता हूँ हाथ से। बाहरी अंधकार का निर्णायक सैन्य संपन्न सत्ताधारी प्रशासन तो है ही, उसकी सघनता में उसका भी योगदान है, जो नायक के सुपरिचित आलोचक, कवि, साहित्यकार और कलाकार हैं। जाहिर है कि अंधेरे में का काव्य नायक एक ओर अपने भीतर अंधकार संकल्पशीलता और आत्म दौर्बल्य तथा दूसरी ओर बाहरी अंधकार सत्ता एवं समान धर्मा बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिपक्ष में एकजुट होना से जूझने के लिए अभिशप्त है। यही उसकी त्रासदी है और यही इस कविता का प्राणधारक तत्व भी है। राम की शक्ति पूजा में स्थिति कुछ भिन्न है। अंधकार वहाँ भी है, किंतु वह एक अप्रत्याशित स्थिति शक्ति का रावण के पक्ष में होना से उपजी दिंग विमूढ़ता का परिचायक और प्रतीक है। अंधेरे में के काव्य नायक और राम की शक्ति पूजा के राम के चरित्रों का मूलभूत विभेद ही यही है कि जहाँ प्रश्न निरंतर आशंकाग्रस्त रहता है, वहाँ दूसरा अवसर विशेष पर आशंकित होता है, और यह भी कि जहाँ प्रथम अंत तक समाधान की तलाश में पाठक को आश्वस्त करने की कोशिश में लग्न रहता है, वह दूसरों को ऐसे किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंधेरे में का काव्य नायक अंत तक अंधेरे में ही रहता है। राम की शक्ति पूजा का नायक कविता के अंत में द्विधा मुक्त हो जाता है। राम की शक्ति पूजा के नायक का अंततः अंधकार से बाहर निकल आना इस कविता की सापेक्षिक विशिष्टता है। यह एक प्रतीकात्मक स्थिति है। मिथकों के अध्येताओं ने समूचे देवदानव संघर्ष को प्रकाश और अंधकार की दैनंदिन ऋतचर्या की आदिम रूपकात्मक अभिव्यक्ति माना है। आदिम युग की अग्नि तथा प्रकाश की अनिवार्य आवश्यकताओं के संदर्भ में ज्योति तत्व ने आराध्य देवता का रूप ग्रहण कर लिया है। उसके प्रतिरोधी अंधकार को असुर दानव राक्षस के रूप में देखा जाने लगा। प्राचीन मिथकों की इस प्रकृतिपरक व्याख्या की पुष्टि राम की शक्ति पूजा में बड़े ही सहज रूप में स्वतः ही हो गई है। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजः प्रसार। पृष्ठ संख्या 50, राम की शक्ति पूजा की यह एक उल्लेखनीय विशिष्टता है कि इसमें एक बड़े मिथकीय सत्य को सुस्पष्ट कर दिया गया है। प्रकाश और अंधकार का द्वंद्व राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में दोनों ही कविताओं में आद्योपांत चलता है। राम की शक्ति पूजा में अंततः यह द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अंधेरे में अनिश्चय बना रहता है, क्योंकि कवि स्वयं यह स्वीकार करता है कि वह अभी व्यक्तित्व की तलाश में है। वस्तुतः निराला और मुक्तिबोध की रचना मना स्थितियों में किंचित अनुभवात्मक समानताओं के बावजूद मूलभूत प्रस्थान भेद रहे हैं। उनकी कविताओं का चरित्र भी इसलिए एक जैसा नहीं है। मशाल का ही प्रतीक ले लो, जो दोनों ही कविताओं में आता है। राम की शक्ति पूजा में मशाल का बिंबात्मक प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है। राम की सेना मंत्रणा के लिए शिविर में बैठी है। चारों ओर अमावस्या का निरंतर गहराता हुआ अंधकार है। अंधकार की सघनता के कारण दिशा का ज्ञान खो गया है। हवा थम गई है। पीछे समुद्र अबाध गति से गर्जना कर रहा है। दिन भर के विकट युद्ध के बाद पराजय बोध से विषण वानर सेना के लिए रात्रि का यह माहौल उनकी हताशा को बढ़ाने वाला है। इस भीतरी निराशा और बाहरी रात्रि अंधकार में केवल एक मशाल जल रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभी आशा की कोई किरण शेष है। और यह व्यंजक बिंब ही, किंतु इसे राम के व्यक्तित्व के माध्यम से बच रही आशा का प्रतीक कहा जा सकता है। मशाल अंधेरे में भी है। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा जल और निस्तब्ध जल, डॉट 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 डॉट, घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में। मशाल का यहाँ भी लगभग वही अर्थ है जो राम की शक्ति पूजा में है। राम की शक्ति पूजा में राम के परंपरा प्रतिष्ठित अजेय व्यक्तित्व का सुदृढ़ आधार है। अंधेरे में कवि के भीतरी अंधेरे के बीच में चमक उठने वाला आत्मालोक है। फर्क यह है कि यह मशाल किसी की फूंक से एकाएक बुझ जाती है, जबकि राम की शक्ति पूजा की मशाल का आलोक क्रमशः बढ़ता जाता है। मुक्तिबोध सफाई देते हैं। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, इसलिए बाहर के गुंजन, जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारकर एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यों अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। राम की शक्ति पूजा आस्था का इतिहास है। अंधेरे में मध्यम वर्गीय दुर्बल मन का दयनीय वर्तमान है। यही दोनों कविताओं का मौलिक प्रस्थान भेद है। पृष्ठ संख्या 51। निराला मूलतः चित्रणात्मक प्रतिभा के कवि हैं। मशाल का उपयोग राम की शक्ति पूजा में स्वतंत्र प्रतीक रूप में ना होकर एक व्यंजक प्रभावशाली बिंब के अंग के रूप में हुआ है, किंतु वह पूरे बिंब के अंत में है। अतः समग्र प्रभाव की धुरी बन जाने के कारण उसकी व्यंजना अधिक प्रतीकात्मक हो उठी है। बिंब यह है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा निशा का ज्ञान, अस्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। यह समूचा बिंब स्थिति व्यंजक है। अमानिशा का अंधकार समूची वानर सेना की निराश मनः स्थिति का व्यंजक है। दिशा बोध का लुप्त होना किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति का परिचायक है। पवन संचरण रुकना, सांस रोककर राम के वक्तव्य की प्रतीक्षा करना सूचित करता है। समुद्र गर्जन रावण पक्षीय दुर्दम्यता और उसके सांप्रतिक विजय उल्लास की ओर संकेत करता है। पर्वत राम के समान या राम पर्वत के ही समान ध्यानमग्न है, और उन्हीं की अक्षत वर्तमानता पूरी सेना के लिए एक अफाट अंधकार में एक मशाल के समान है। प्रकट है कि यह शुद्ध प्रतीक विधान नहीं है। बहुत करके इसे प्रतीकात्मक बिंब विधान कह सकते हैं, अन्यथा है यह व्यंजक बिंब विधान ही। सीता के प्रथम मिलन की स्मृति से संबंधित यह बिंब भी व्यंजक ही है। प्रतीकात्मक बिंब इसे थोड़ी छूट लेने के साथ ही कहा जा सकता है। कांपते हुए किशलय, झरते पराग समुदय, गाते खगनो जीवन परिचय, तरमलय मलय ज्योति प्रताप स्वर्गीय। पुष्प वाटिका के परिवेश का यह बिंब अपनी व्यंजकता के कारण जीवंत तो हो उठा है। व्यंजनाएं प्रथम प्रेमानुभूति से संबंधित हैं। हिलते हुए नए नए पत्ते और झरते पराग कण क्रमशः कंप तथा स्वेद सात्विक भावों के व्यंजक हैं। पक्षियों का उल्लासपूर्ण कलरव, वृक्षों का सुवासित वायु से वैलित होना तथा आकाश से झरता आलोक निर्झर, तीनों ही बिंब राम और सीता के उल्लसित प्रथम प्रणय अनुभव की समग्र मानसिक एवं दैहिक व्यंजना करने वाले हैं। बात यहाँ व्यंजकता की ही है, क्योंकि इस चित्र के आगे सीता के नेत्रों में जो विस्तृत चंचल कंपन उत्पन्न होता है वह परिवेश की व्यंजकता की ही पुष्टि करता है। डॉट 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 ज्ञात छवि प्रथम सवीय जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। प्रतीकात्मकता प्रधान होती है तो ये पंक्तियाँ निसत्व हो जाती, क्योंकि ये सीधे भावात्मक विकास क्रम से जुड़ी हुई है। प्रतीक विधान दूर तक नहीं चलता, यदि वह दूर तक चलता है तो वह सांग रूपक की श्रेणी में परिगणित होता है, या फिर वह समासोक्ति का रूप ले लेता है। अपनी चित्रणात्मक प्रतिभा के कारण निराला सशक्त बिंब रचना के क्षेत्र में अलग पहचान रखते हैं, और राम की शक्ति पूजा में भी उनकी विशिष्टता का पूरा पूरा परिचय मिल जाता है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में संभवतः निराला की उतनी रुचि नहीं थी। राम की शक्ति पूजा में प्रतीक विधान के दो अन्य अवसर आते हैं। राम का अपने को दुर्गा के वाहन का प्रतीक मानना तथा अनुष्ठान आरंभ करते समय हरित गुल्म तृण से शोभित पर्वत को पृष्ठ संख्या 52 पार्वती के रूप में कल्पित करना, दोनों ही स्थल प्रतीक विधान की दृष्टि से एक जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक माता समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। दो देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, दशमिक समस्त है हस्त। डॉट 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 प्रथम उद्धरण में प्रतीकत्व का ध्यान उन्हें दुर्गा के पारस्परिक रूप सिंहवाहिनी के आधार पर आता है, और क्षत्रिय होने के नाते उन्हें वह ठीक लगता है। जाहिर है कि इस प्रतीकत्व में उद्भावना की नव्यता नहीं है। दूसरे उद्धरण में प्रतीक विधान की स्थिति बन पाने से पहले ही सांग रूपक का व्याख्यात्मक वातावरण बन गया है। निराला इस संदर्भ में ना कोई दावा पेश करते हैं और ना ही कोई सफाई देते हैं। वे अपनी रचना सीधे पाठक और समीक्षकों के हाथों में देकर अलग हो जाते हैं। मुक्तिबोध के साथ ऐसा नहीं है, वे अपने को नई कविता के आत्मसंघर्ष में सक्रिय योगदानकर्ता मानते हैं। उनके ये वक्तव्य काव्य शिल्प के क्षेत्र में उनके योगदान पर शंखनाद करते हैं। एक मेरे प्रतीक रूपक सपने फैलाते हैं आगमी के, डॉट 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 मैं विचरण करता सा हूँ एक फैंटेसी में, यह निश्चित है कि फैंटेसी कल वास्तव होगी। एक अंतरकथा चांद का मुंह टेढ़ा से। दो घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, डॉट 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 उपमाएं द्वार पर आते ही कहानी कहती हैं कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। मुझे कदम कदम चांद का मुंह टेढ़ा है से। पहले वक्तव्य में मुक्तिबोध अपने प्रतीकों तथा रूपकों को लेकर यह समझना चाहते हैं कि वह उनके माध्यम से भविष्य का एक स्वप्नगत मानचित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहे हैं, जो कि उनकी विशिष्ट अभिव्यक्ति पद्धति फंतासी के अंग के रूप में, और यह कि उनकी फंतासीय कल्पनाएं भविष्य में चरितार्थ होंगी। दूसरे वक्तव्य में वह अपनी उपमाओं और अपने प्रतीकों को लेकर कवि-जनोचित अदात्म दर्प को अभिव्यक्त करते हैं। मुस्काते रूप चित्र की भी बात कवि कहता है, जिसे व्यापक अर्थ में बिंबात्मक प्रस्तुति के सौंदर्य के रूप में समझा जा सकता है। फिलहाल बात प्रतीक विधान की हो रही है। कविता का आरंभ रूपक से होता है। जिंदगी के अंधेरे कमरे, संदर्भ अमूर्त तथा अति व्यातिपूर्ण होने के नाते रूपक दब जाता है, प्रतीकत्व उभर आता है, प्रतीकार्थ मिलता है। पृष्ठ संख्या 53, प्रतीकार्थ मिलता है। अनिश्चय एवं संशय से भरा वर्तमान जीवन, इस अंधकार में जो प्रतिभा उभरती है वह मनु जैसा कोई व्यक्तित्व है, जिसका हनु दृढ़ है, जिसकी नासिका नुकीली है और जिसका ललाट भव्य है। यदि इसे मनु का बिंब माना जाए तो पौराणिक चरित्रों की प्रतीकात्मक विश्लेषण परंपरा के संदर्भ में वह कवि के भीतरी सांस्कृतिक आत्मबल के प्रतीक ठहरते हैं, किंतु कवि उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। फिर अंधकार से घिरे तालाब के आसपास का जंगल जगमगा उठता है, कोई तिलस्मी द्वार आवाज के साथ खुलता है और लाल लाल मशाल के आलोक में एक गौरवर्ण दीप्त दृघ सौम्य मुख रक्ता लोक स्नात पुरुष साक्षात रहस्य के रूप में उभरता है। काव्य नायक उसे अपनी आत्मा की प्रतिमा, अपने परिपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण अवस्था तथा अपनी परम अभिव्यक्ति मानता है। वह प्रतिमा पुनः अंधकार में खो जाती है क्योंकि जंगली हवा मशाल को बुझा देती है। जंगली हवा समकालीन जीवन में व्यक्तित्व के विकास की विरोधी स्थितियों का प्रतीक हो सकती है। समूची कविता का आधार यही आरंभिक प्रतीक विधान है, क्योंकि इसके बाद काव्य नायक संत्रास घुटन आतंक और पलायन के भयावह दौर से गुजरता रहता है और अंत में उसी रहस्य पुरुष को पाने के संकल्प के साथ कविता समाप्त होती है। कविता के बीच में आतंक एवं संत्रास के जीवन बिंब हैं, जिनमें बीच बीच में प्रकाश, बिजलियाँ, रेडियोएक्टिव रत्न दीप आदि और अंधकार, भयानक खड्ड, सूना, गलियारा, रात के अंधेरे में छद्म महापुरुषों तथा सत्ताधारियों का जुलूस आदि के संकेतक बिंब उभरते रहते हैं। समग्रतः अंधेरे में कविता राम की शक्ति पूजा की ही भांति बिंब प्रधान है। इस विशिष्टता के साथ ही प्रथम में समकालीन स्थितियों तथा चरित्रों के व्यंजक बिंबों का बाहुल्य है, वहीं इस रचना को आधुनिकता के परिवेश में सापेक्षिक रूप से अधिक प्रासंगिक बनाता है। प्रासंगिकता के संदर्भ में अंधेरे में कविता में शिशु का मुक्तिबोध ने जैसा सशक्त प्रतीकात्मक उपयोग किया है वह अलग से रेखांकित करने योग्य है। कवि के अवचेतन के रंगमंच पर गांधी जी उभरते हैं और वह काव्य नायक के समक्ष अपनी अप्रासंगिकता स्वीकार करते हुए बताते हैं कि भविष्य का उद्भव जनता के गुणों से ही संभव है। वह उसे अपनी थाती सौंपते हैं। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा, डॉट 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 डॉट, उस द्वित पुरुष ने कहा तब मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना, डॉट 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 डॉट, बालक लिपटा है मेरे इस गले से चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश, स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। पृष्ठ संख्या 54, सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु, डॉट डॉट डॉट, गरम गरम अस्त्र टपकते हैं मुझ पर, डॉट 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 डॉट, इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं, वह शिशु चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र हैं सूरजमुखी फूल गुच्छे। शिशु आधुनिक कविता में भविष्य के प्रतीक के रूप में आता है। मुक्तिबोध ने उसे सूर्यमुखी कुसुम स्तुतिबंध में रूपांतरित करके इस प्रतीकत्व को और सार्थक बना दिया है। निराला ने भी शिशु का इसी प्रतीकार्थकता के साथ एक स्फुट कविता में उपयोग किया है। धन तम से आवृत धरणी है, तुमुल तरंगों की तरणी है, मंदिर में बंदी है चारण, चिंगर रह है वन में वारण, रोता है बालक निष्कारण, बिना शरण सारण भरणी है, अर्चना से। वस्तुतः रोता हुआ शिशु फंतासीय श्रेणी का प्रतीक है, जो भविष्य के साथ साथ नई संस्कृति तथा नवयुग के नए सत्य का प्रतीक हो सकता है। इस शिशु का सहसा रो उठना या निष्कारण रोना कोई भयानक अर्थ रखता है। यहाँ शिशु उस विराट जनसमूह का भी प्रतीक कहा जा सकता है जो भविष्य के संदर्भ में अपने को आत्यंतिक रूप से बेसहारा अनुभव कर रहा है। मुक्तिबोध का यह प्रतीकात्मक प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली है क्योंकि लंबी कविता में प्रयुक्त होने के कारण कवि उसे ऐतिहासिक तथा अस्वस्ति परक भावी सूर्यमुखी पुष्प अस्तवक का अर्थ वैशद्य भी प्रदान कर सका है। निराला ने इस प्रतीक का प्रयोग स्फुट प्रगीत में किया है, अतः वहाँ ऐसे अर्थ विस्तार की गुंजाइश नहीं थी। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में ऐसा ही एक अन्य सशक्त प्रतीक उपस्थित किया है। पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिनमें प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक, ले जाने उसको धसना ही होगा झील के हिमशीत सुनील जल में। इस कमल का रंग कभी कभी सांवला भी दिखता है। सांवला एक कमल जो खोहों के जल में भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत सुझाव संदेश भेजते रहते हैं। पृष्ठ संख्या 55। कमल यहाँ आदर्श भविष्य के स्वप्न का प्रतीक हो सकता है। अरुण रूप में वह यूटोपिया का प्रवाचक है और सांवले रूप में उसकी उपलब्धि के लिए प्रेरक संघर्ष चेतना का प्रतीक। कमल राम की शक्ति पूजा में भी आया है किंतु उसमें प्रतीकार्थकता नहीं है। तोड़ो लाओ वह कमल लौट कर लड़ो समर। राम की शक्ति पूजा में कमल सादृश्य संबंध के आधार पर अवरुद्ध कथा की गति को पुनः जीवित करने में सहयोगी बनाता है, अतः उसका उपयोग राम की शक्ति पूजा में अप्रस्तुत विधान के अंतर्गत व्यंजक उपमान के ही रूप में हुआ है, प्रतीक के रूप में नहीं। राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में दोनों ही कविताएं बिंब विधान की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। एक ओर यह सर्वमान्य तथ्य है कि निराला की काव्य प्रतिभा चित्रणात्मक है, दूसरी ओर मुक्तिबोध अपनी कविता के विषय में स्वयं यह कहते हैं, विचारों के चित्रों की अबल में चिंतन। प्रकट है निराला समीक्षकों की धारणा के माध्यम से और मुक्तिबोध अपनी रचना प्रक्रिया के विश्लेषण क्रम में बिंबाश्रयी कवि ठहरते हैं। दोनों कविताओं की प्रतिज्ञा एक ही है, अंधकार को परास्त करना या उससे निजात पाना, वह चाहे व्यक्तिगत अंधकार हो या समष्टि परक अथवा दोनों ही। विचित्र साम्य है कि दोनों का अंधकार व्यष्टिगत ही है और समष्टिगत भी। राम की शक्ति पूजा में यदि राम के व्यक्तिगत नैराश्य की व्यंजना सीता के संदर्भ में होती है, जानकी हाय उद्धार पिया का हो न सका, तो राजसत्व की देवत्व पर विजय की सामाजिक चिंता भी उन्हें व्याकुल किए हुए है। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, अंधेरे में के काव्य नायक की भी हताशा दोहरी है। समूची सामाजिक राजनीतिक विडंबना का साक्षी होने के कारण वह दंडित किए जाने के भय से निरंतर भागता रहता है। साथ ही वह यह भी अनुभव करता है, जन क्रांति को दबाने का क्रूर प्रयास हो रहा है और वही अकेला नहीं, सभी संत्रस्त होकर भाग रहे हैं। यह सब क्या है? किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल ला है, दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में भरे पैर, सांस लगी हुई है जमाने की जीव निकल पड़ी है। इस सर्वग्रासी अंधकार से निपटने के लिए दोनों ही कविताओं में प्रकाश के तीन उपकरण अपनाए गए हैं, मशाल बिजली की चमक और प्रातःकालीन आलोक। मशाल दोनों ही कविताओं में आई है जिसका विवेचन प्रतीक विधान के प्रसंग में हो चुका है। राम की शक्ति पूजा में बिजली की गोंद का उपयोग अप्रस्तुत के रूप में हुआ है किंतु वह तत्कालिक दृष्टि से अंधकार निवारण का एक सशक्त कारण बनती है। ऐसे क्षण अंधकार धन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया सुकुमारी का छवि डॉट 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 सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। अंधेरे में कविता के विद्युत के एकाधिक संदर्भ हैं। पृष्ठ संख्या 56। एक वृक्षों के शीर्ष पर नाच नाच उठती हैं बिजलियाँ। दो दिखते हैं मुझको बिजली की नंगी लताओं से भरे रहे, सफ़ेद नीले मोतिया चंपई फूल गुलाबी आदि। प्रातःकालीन आलोक भी दोनों कविताओं में है। एक निश्चि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योत हिरण, राम की शक्ति पूजा। दो कमरे में सुबह की धूप आ गई है, गैलरी में फैला है सुनहला रवि छोर अंधेरे में। अंधकार से जूझने में सहायक एक उपकरण और भी है, पक्षीय पात्रों द्वारा उद्बोधन प्रबोधन। राम की शक्ति पूजा में यह कार्य जंबुआन और विभीषण के द्वारा संपन्न होता है, और अंधेरे में के काव्य नायक के अवचेतन में अनेक शक्ति संपन्न दैवी मानुषी बिंब उभरते रहते हैं, जो उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयत्न बीच बीच में करते रहते हैं। दैवी कोटि के विवाह का हनुमान, मनु और मानवीय श्रेणी का सरफिरा पागल इसी प्रकार के बिंब हैं। बिंब इसलिए कि ये सभी कवि के अवचेतन की सृष्टि हैं, जिनसे काव्य नायक को अपना संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा मिलती है। राम की शक्ति पूजा का समूचा विन्यास बिंबात्मक है, कतपे संवादात्मक तथा वर्णात्मक स्थलों को छोड़कर। कविता का आरंभ ही दिन भर चल रहे युद्ध के विवरणों को अपने में समेटे हुए समासिक पद रचना पर आश्रित छोटे छोटे स्थिति व्यंजक बिंबों से होता है। स्थिति व्यंजक कहने का यह तात्पर्य नहीं कि वह स्थिर श्रेणी के बिंब हैं, क्योंकि वह युद्ध के घात प्रतिघात की सक्रियता और त्वरा को जीवंत बनाने के ही कारण चर्चित होते हैं। छोटे छोटे शब्द चित्रों के द्वारा युद्ध की विकरालता को मूर्तिमान कर देना निराला जैसे शब्द शिल्पी के ही वश की बात थी। दूसरा कोई कब इतनी दूर तक शब्द चित्रों की निरंतरता का निर्वाह शायद ही कर पाता। एक प्रकार से ये भी व्यंजक बिंब हैं, प्रतीकात्मकता के अर्थ में नहीं, क्योंकि दो बिंबों के बीच जो कहने से रह जाता है वह बिंब क्रम से व्यंजित हो जाता है। एक उदाहरण ले, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कवि विषम हूह। निराला के पास विस्तार से वर्णन के लिए अवकाश नहीं है, क्योंकि कविता का मुख्य विषय युद्ध वर्णन न होने के कारण वह उनकी दृष्टि से सीधे सीधे प्रासंगिक नहीं था। युद्ध की केवल वर्तमान मना स्थिति की कारणात्मक पृष्ठभूमि के रूप में झलक भर देना अभीष्ट था, और वही निराला ने किया। दोनों पक्ष क्षण क्षण पर व्यूह रचना बदलते रहते हैं, और साथ ही एक दूसरे की नई व्यूह रचना को तोड़ने के नए नए उपाय भी तलाशते रहते हैं। वानर सेना राक्षसों के मार्ग में बाधा डालती है और क्रुद्ध होकर चीखती है। पूरी व्यंजना यह है कि रावण का पक्ष व्यूह रचना में भी अपेक्षाकृत अधिक कुशल है, और विपक्ष के व्यूह को तोड़ने में भी। और यह भी वानर सेना राक्षसों को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती और विफल होने पर चीखती चिल्लाती है। क्रिया प्रतिक्रिया पूर्ण एक दीर्घकालिक युद्ध खंड को निराला मात्र दो लघु बिंबों में जीवंत कर देते हैं। व्यूह रचना और उसका भेदन, वानरों द्वारा राक्षसों के मार्ग में अवरोध डाला जाना और फिर उन्हीं की चीख पुकार, पृष्ठ संख्या 57। इसे गति त्वरा क्रियात्मक व्यंजक बिंब कह सकते हैं। स्थिर स्टैटिक बिंब के दो रूप दृष्टव्य हैं, एक युद्ध काल का, दूसरा युद्ध अवसान के बाद का। दोनों बिंब राम के हैं। एक अनिमेष राम विश्वजिद्दीव्य शरभंग भाव विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव, दो रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण स्थल धनुगुण हैं, कटिबंध त्रस्त तूणीर धरण दृढ़ जटा मुकुट हो विप्रयस्त प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। प्रथम चित्र में राम युद्ध भूमि में है, धनुष पर उनकी मुट्ठी कसी हुई है और उनके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। यहाँ जो नहीं कहा गया है वह यह कि राम युद्ध भूमि में होने के नाते जड़वत हो ही नहीं सकते, और उनकी यह सक्रियता इस स्थिर बिंब में निहित है जिसका चित्र पहले आ चुका है। विछुरित वहिन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, डाट 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 राघव लाघव रावण वारण गत युग पहर, बाद में भी इस सक्रियता का उल्लेख होता है। कर्ता मैं योजित बार बार शर निकट निश्चित, डॉट 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 निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। स्थिर बिंब एक ऐसी गति गर्भी प्रयोग बहुत कम कवियों में मिलेगा। दूसरा बिंब अवसाद व्यंजक है। निराला की चित्रकला का आत्यंतिक उत्कर्ष जिन कुछ स्थलों पर देखा जा सकता है, यह उनमें से एक है। निराला रसवादी परंपरा के कवि हैं, बिंबवादी नहीं। इसलिए उनका औपम्य विधान इस चित्र को अत्यंत प्रभावशाली बना देता है। बिंब तो अलंकार का नाम ही ले लेने से बिदक उठेंगे। एक और चित्र ले सकते हैं, शक्ति की पक्षधरता की बात कहते हुए। जब राम के नेत्रों में आंसू छलक आते हैं और कंठ भर आता है, तो निराला लक्ष्मण हनुमान आदि की प्रक्रियाएं जिस रूप में चित्रित करते हैं, वह रस दृश्य से अनुभव विधान के अंतर्गत है। किंतु हम उसे अंतः ऊर्जस्वित बिंब की एक नई श्रेणी दे सकते हैं। रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि गह युगपद मस्तक दंड। स्थिर जंबवान समझते हुए ज्यों सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे ज्यों विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यों स्पंदित वातावरण विषम।